गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। परंपरा की बात जब आती है तो कहा परंपरा किसे कहते हैं, ये परंपरा है क्या? तो बतलाया जो परम ब्रह्म है, ब्रह्म दो प्रकार का है, एक जो ब्रह्मा जी हैं जगत की सृष्टि करते हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्मा है, और उनसे भी एक परम है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर है, हमारे यहां उसको परम गुरु इत्यादि संज्ञा देते हैं। तो जो परम है वहां से जो शुरू होता है, सबसे परे है, उस परम से प्रारंभ करके पराविद्या तक जो आता है, हमारे तक जो आता है सृष्टि तक, वह परंपरा है। उसमें कुछ शेष रह नहीं जाता है, मतलब वह एक ऐसा कनेक्शन है जो कनेक्शन पावर हाउस से चल करके, पावर हाउस के पहले, पावर हाउस तो उत्पादन और स्टोरेज क्षमता है, उसके पहले जहां से शुरू होता है, जहां बिजली पैदा होती है, उसके मूल में जो जीरो रूप में पावर है, जैसे सूर्य की आकृति आप देख लो, पूरा पूरा जीरो ही है, गोल है, तो वैसे वो शून्य में रह करके सभी प्रकार के संख्याओं का, गणनाओं का जो सर्जन करता है वह परम है। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं उसी उस परम के स्वरूप में होते हैं, और उस परम से यह परा जो क्रमशः चले आ रही यह विद्या है, यह जो है इसका पालन करने वाले जो क्रम वंशानुक्रम गुरु अनुक्रम है वह क्या है, परंपरा है, जो अत्यंत पावन है, उसके मूल में जो परम है इसीलिए वह परंपरा है, अन्यथा वो परंपरा नहीं है। इसलिए सर्वत्र ही ज्ञान की परंपरा है, भक्ति की परंपरा है। पूछते हैं आखिर आपके गुरु कौन है, आपके माता पिता कौन है, उनके माता पिता कौन है, तो ये जो परंपरा है यह कुल की परंपरा है, विद्या कुल, गुरु कुल, वंश कुल, ये इन्हीं कुलों की परंपरा में ऋषि लोग जो कथा करते हैं, उस कथा में बतलाया कि महाराज कल जो सोम शर्मा जी हैं, वह सोम शर्मा जी की पत्नी ने उपदेश दिया कि आपको श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार का मूल हरि ही है, जो कि अंधकार का हरण करके प्रकाश देता है। कहेंगे क्यों, तो वह ज्योति रूप से सर्वत्र स्थित है, प्रकाश रूप में अवस्थित है, इसीलिए तो ज्योति रूपेण यह स्थितः कहा। तो इसलिए उस ज्योति स्वरूप जो परम है, उस परम की आराधना करना चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि होती है, जिसके द्वारा पालन होता है, और जिसके द्वारा ही संहार होता है। ऐसे प्रभु का जब आप स्मरण करेंगे, उसकी वंदना करेंगे, तो आप में शक्ति का संचार होगा, और उस शक्ति के माध्यम से आपको जो आपका वंश है वह विस्तृत होगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं होगा। इसलिए सोम शर्मा ने भगवान की आराधना किया, बोला हे भगवान, आप इतनी बड़ी पृथ्वी को जल के अंदर से निकालने में वाराह स्वरूप धारण कर लिए, कुकर सुकर का भी स्वरूप धारण कर लेते हैं पृथ्वी के उद्धार के लिए, तो कम से कम मेरे लिए एक पुत्र आप प्रदान करें, जिस पुत्र से हमारा यश बढ़े। ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान ने वरदान दिया कि आप जो कह रहे हो वैसा ही होगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और भगवान वरदान उनको दिया, बोला कि आप से जो सुत होगा वो आपके वंश को बढ़ाने वाला होगा, इसलिए आप पुण्य कार्य में तत्पर रहें। तो जहां पर पत्नी सुमना हो जाती है, सुंदर मन वाली होती है, जहां उसका पति के साथ तारतम्य बन जाता है, वहीं पर ऐसे पुत्रों का अवतार होता है। जब पति और पत्नी के दोनों ही मन एक हो जाते हैं, संगच्छध्वम संबदध्वम संबो मनांसि जानताम, साथ में चलते हैं, साथ में बोलते हैं और साथ ही उनका सहज्ञान होता है। ये जब तीनों वृत्तियां एक हो जाती है तो उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तब आत्मा वही जायते पुत्रः, वही आत्मा उस पत्नी के रूप, पत्नी के रूपी क्षेत्र में पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा जायते यस्याम पति रीति जाया, जिसमें पति ही उत्पन्न होता है बीज रूप में, इसलिए उसको कहते हैं जाया। और यदि जाया नहीं है तो क्या है, तो कहा कि बस द्विविदारणे धातु है, दारयति विदारयति भ्रातृनिति दारा, जो भाई को भाई से लड़ा दे, अनग आप नहीं थे तो आपके भाई ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, वो आपका सब धन ले ले रहा है, हमको देखना नहीं चाह रहा है, यह जो स्थिति बनती है वह दारा भी एक नाम है, लेकिन महर्षियों ने दारा शब्द को पुलिंग में रखा, वो सामान्य नहीं है। जाया स्त्रीलिंग है, मतलब वह प्रेम से मधुर रूप से पति को जीतती है और तब पति का उसके साथ सामंजस्य बनता है, तब पुत्र की उत्पत्ति होती है। अन्यथा जो दारा है वह झगड़ती है, भाइयों के प्रति उसका विद्वेष होता है, आक्रोश होता है, इसलिए वह दारा है, उसका सारा कार्य पुलिंगवत है, तब वहां पुत्र नहीं लड़के पैदा होते हैं, क्योंकि लड़ते लड़ते लड़के पैदा हो जाते हैं, संघर्ष से पैदा होते हैं, इसलिए लड़के हो गए, पुत्र नहीं हुआ। यदि पुत्र होगा तो जाया से पुत्र होगा, इसीलिए कालिदास जी ने प्रयोग किया है जाया प्रतिग्रह हितगंध माल्याम, दोनों ने जो है गाय की पूजा किया, राजा दिलीप ने पुत्रोत्पत्ति के लिए जैसे पूजन किया था, उसी तरह से जो भगवान गोविंद हैं उनकी पूजा ये कर रहे हैं। कहा गोविंद क्या है, तो कहा गो नाम है इंद्रिय का और गो नाम है पृथ्वी का और गो नाम है इंद्रियों का और गो नाम है स्वर्ग का, इन सबको विंदति प्राप्नोति गोविंदः, जो इंद्रियों के प्रकाश को प्राप्त कराए, जो हमारे अंदर ज्ञान भरे, जो हमको स्वर्ग की तरफ सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, जो गायों की रक्षा करे, वह गोविंद है। जो संपूर्ण धरती की रक्षा करे वह गोविंद है, इसलिए गोविंद के शरण में जाने के बाद सुमना के गर्भ से सुब्रत की उत्पत्ति होती है, वह सुब्रत हमेशा सुंदर व्रतों का पालन करते हैं, क्योंकि जो सुब्रत है, सु मतलब सुंदर और व्रत मतलब जिसका व्रत है, जिसका ध्यान सुंदर है, जिसका आचरण सुंदर है, वही तो सुब्रत है, दूसरा कोई सुब्रत नहीं हो सकता है। इसलिए यदि सुंदर व्रत वाला पुत्र उत्पन्न होगा तो माता पिता को स्वर्ग तक पहुंचा देगा, माता पिता के भार को भी हल्का कर देगा सुंदर व्रत पालन करके। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सुब्रत यदि पुत्र होता है तो वह पिता के लिए आजीवन स्नान करता है तीर्थों में जा जा करके, पिता के मरने के बाद भी पिता के निमित्त दान देता है, पिता के प्रति हमेशा उनका कल्याण हो इसके लिए लगा रहता है। तो जो सुब्रत लड़का हुआ वह अत्यंत मेधावी था। मेधा कहते हैं धारण शक्ति को, जो हम पढ़ें पढ़ने के बाद तुरंत ही याद रहे, नहीं तो कितने बालक होते हैं सुबह पढ़ाओ शाम को सफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी अफा सुबह पढ़ा शाम को सफा, वैसे नहीं। वह जो एक बार सुन लिया शांत चित्त से, इसलिए उसको याद रहता है, इसलिए उसका नाम सुब्रत है। सुब्रत भी व्रत धारण करने वाला है, इसलिए भगवान विष्णु को हमेशा याद करता है। जिसके पिता के हृदय में विष्णु हो वह हमेशा, माता भी संकीर्तन करती थी इसलिए उसने गर्भ में ही भगवान नारायण का दर्शन कर लिया था। तो जिसके पिता अच्छे होते हैं वह उसका पुत्र भी अच्छा होता है। हमेशा भगवान के ध्यान में सुब्रत जी लगे रहते थे, अध्ययन करते थे। तो अध्ययन में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता के देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो, और मित्रों को जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव रखते थे उसी प्रकार से मित्रों में भी भाव रखा करते थे, क्योंकि मित्र के बिना यह संसार जो है वह अधूरा है। नीतिकार तो ऐसा कहते हैं कि यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, सौ सौ मित्र बनाना चाहिए, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, न जाने कब कौन कहां काम में आ जाए, कम से कम मित्र कहेंगे एक बार तो कम से कम सामने तो अहित नहीं करेगा, पीछे चाहे जो करना है कर ले, मुंह पर तो मधुर ही बोलेगा ना, विरोध तो सामने से नहीं करेगा। तो इसलिए मित्र बहुत बना के रखना चाहिए। तो उसके भी सब मित्र है। हमारे यहां मंत्र का विधान है कि सुंदर मित्र के प्राप्ति के लिए जल और औषधि पुष्प दोनों को लेकर के जल से प्रक्षेपण करना चाहिए, उससे सुंदर मित्र हमारे बनते हैं। और सबसे बढ़िया मित्र तो भगवान हरि है, क्योंकि जिसका हम स्मरण करते हैं मित्र भावे न, भगवान का हम जिस भाव से स्मरण करते हैं उसी भाव से वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। मित्र भाव के द्वारा अर्जुन ने प्राप्त किया, पतिभाव के द्वारा गोपियों ने प्राप्त किया, और द्वेष भाव से कंस आदि ने प्राप्त किया, और देवकी इत्यादि माताओं ने पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो मित्र वही है जो हमेशा विपत्ति में काम आए, क्योंकि संपत्ति में तो बहुत सारे मित्र होते हैं लेकिन जो मित्र असली है वह विपत्ति में साथ देता है। ऐसा जो गोविंद है वह सबका मित्र है। बालक जो मेधावी पुण्यात्मा होते हैं वह हमेशा सबके साथ उनका व्यवहार अच्छा होता है, किसी के अहित की चिंता नहीं करते हैं, उसका जो मेधावी बालक सुब्रत यह जो नामकरण किया गया वह चूंकि भगवान का नाम है इसलिए भगवान का नाम जब पुत्र का नाम होता है तो उसको स्मरण करने से हमेशा भगवान के ही नाम हमारे मुंह पर आते हैं। इसलिए यदि नाम रखना हो ना